डॉक्टर रॉबर्ट यारब्रो, पास्टोरल एपिस्टल्स 17:9, 2 तीमुथियुस 2:1-21, 2024 रॉबर्ट यारब्रो और टेड हिल्डेब्रांट। यह डॉक्टर रॉबर्ट डब्ल्यू यारब्रो, देहाती धर्मपत्रों, देहाती नेताओं और उनके अनुयायियों के लिए प्रेरितिक निर्देश पर अपने शिक्षण में है। 17:9, 2 तीमुथियुस 2:1-21। हम देहाती पत्रों, देहाती नेताओं और उनके अनुयायियों के लिए प्रेरितिक निर्देशों का अपना अध्ययन जारी रखते हैं। तो ये ऐसे पत्र हैं जो परमेश्वर के परिवार में हर किसी पर लागू होते हैं, और हम 2 तीमुथियुस 2 को देखने जा रहे हैं। और 2 तीमुथियुस 2 में एनआईवी में आप अध्याय 2 के लिए 2 शीर्षक देखने जा रहे हैं, और पहला है नवीनीकृत अपील, और हम 1 मिनट में देखेंगे कि वह अपील क्या है, और फिर हम 1 लंबा खंड देखने जा रहे हैं जो अध्याय 3 में बदल जाता है, जिसे झूठे शिक्षकों से निपटना कहा जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि शायद हम अध्याय 2 के अंत में रुक जाएंगे और फिर अध्याय 3 में झूठे शिक्षकों को समाप्त कर देंगे। लेकिन मैं अध्याय 2 श्लोक 1 को पढ़कर शुरुआत करना चाहूंगा, जो कहता है, फिर हे मेरे बेटे तू हो सकता है। उस अनुग्रह में जो मसीह यीशु में है दृढ़ हो। और मुझे लगता है कि यह हम सभी के लिए अच्छी सलाह है। और इसलिए आइए इस शक्ति के लिए प्रार्थना के लिए 1 क्षण रुकें। प्रभु, आपकी कृपा के लिए धन्यवाद। उस ताकत के लिए धन्यवाद जो यह हम तक पहुंचा सकता है। हम जानते हैं कि हम सिर्फ 1 व्याख्यान सुन रहे हैं या 1 व्याख्यान देख रहे हैं, लेकिन यह कठिन काम भी हो सकता है। और मैं प्रार्थना करता हूं कि आप हमें सतर्क रहने और आपके प्रति हमारे समर्पण में मजबूत होने में मदद करेंगे। और हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे स्वयं के प्रयासों से परे आप हमें निर्देश देने, हमें प्रोत्साहित करने और अपने पवित्र वचन के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन करने के लिए कार्य करेंगे। हम यीशु के नाम पर प्रार्थना करते हैं, तथास्तु। तो पॉल इन शब्दों के साथ शुरुआत करता है जो उसके अभिवादन की प्रतिध्वनि है, जहां वह तीमुथियुस को मेरा बेटा कहता है, और 1 तीमुथियुस में वह उसे मेरा सच्चा पुत्र कहता है। तो ये प्रेम के शब्द हैं, और वे लाल रंग में हैं। मजबूत बनो लाल रंग में है, क्योंकि यह 1 अनिवार्य रूप है, और आप इसे मजबूत होने के रूप में भी ले सकते हैं। ऐसी स्थिति में यह मजबूत करने की प्रक्रिया में ईश्वर की एजेंसी को रेखांकित करेगा। मजबूत बनने का मतलब है मुझे मजबूत होने की जरूरत है, लेकिन मजबूत होने का मतलब है भगवान द्वारा अपनी आत्मा को मजबूत करने के लिए खुद को खोलना। और मुझे वह विचार पसंद है, क्योंकि तब वह कहता है कि मसीह यीशु में जो अनुग्रह है उसका क्या मतलब है, और जो बातें तूने मुझे बहुत गवाहों के सामने कहते हुए सुनी हैं। जब हमने 1 तीमुथियुस को देखा तो हमारे पास तीमुथियुस के साथ 1 चार्ट था, और हर बार उसका नाम नए नियम में दिया गया था। और हमने देखा कि पॉल के लगभग सभी पत्रों में, मुझे लगता है कि पादरी के बाहर 3 पत्र हैं जहां तीमुथी का नाम नहीं है, और कई पत्रों में वे पॉलिन पत्र हैं, लेकिन वह कोरिंथ के चर्च में पॉल और तीमुथी या पॉल सीलास और तीमुथी कहेंगे। इसलिए हमें आश्चर्य करने की जरूरत नहीं है कि पॉल जब वह बातें कह रहा है जो आपने मुझे कई गवाहों की उपस्थिति में कहते हुए सुनी है, तो वह किस ओर इशारा कर रहा है। जब पॉलुस ने आदेश दिया तब तीमुथियुस वहां था। शायद पॉल ने भी लिखने में मदद की, क्षमा करें, तीमुथियुस ने कुछ बातें लिखने में मदद की जो पॉल कह रहा था। इसके अलावा अधिनियमों में ऐसे स्थान हैं जहां हम देख सकते हैं कि तीमुथियुस मौजूद था और पॉल दिन ब दिन पढ़ा रहा था। तो जिस तरह 12 को 3 साल की अवधि में यीशु की शिक्षाओं को बार बार सुनकर सिखाया गया था, उसी तरह तीमुथियुस को जो कुछ उसने पॉल को कहते सुना था उसे दोहराकर सिखाया गया था। और पॉल कह रहा है, और यह उसकी अपील है, अनुभाग नवीकृत अपील है। वह उससे मजबूत होने और फिर विश्वसनीय लोगों को सौंपने की अपील कर रहा है जो बातें उसने पॉल को कहते हुए सुनी थीं। और उसे इसे इस प्रकार सौंपना चाहिए कि ये विश्वसनीय लोग दूसरों को सिखाने में सक्षम या योग्य हों। अब यह एक तीमुथियुस दो कुछ मंत्रालयों के लिए एक संस्थापक पद्य बन गया है, और यह सही भी है, क्योंकि यीशु ने शिष्यों को बुलाया और फिर यीशु ने अपने शिष्यों को आदेश दिया कि वे जाकर शिष्य बनाएं। और यह एक श्लोक शिष्यत्व की गतिशीलता का सारांश प्रस्तुत करता है। हम सीखते हैं कि कोई और क्या संचारित करता है, और फिर हम इसे उन लोगों को सौंप देते हैं जो स्वयं इसे खरीदते हैं, लेकिन केवल अपने लिए नहीं, बल्कि इसलिए ताकि वे इसे अन्य लोगों तक पहुंचाने का साधन बन सकें। और निस्संदेह यदि वे इसे ईमानदारी से करते हैं तो वे इसे अन्य लोगों तक इस तरह से पहुंचाएंगे कि वे इसे अन्य लोगों तक पहुंचाने के लिए इच्छुक होंगे। और इस प्रकार मसीह के शरीर में शिष्यत्व की श्रृंखला घटित होती है। देहाती पत्रियों में चर्च के विकास के दर्शन के लिए इस पद से अधिक महत्वपूर्ण कोई पद नहीं है। हालांकि यहां एक प्रकार का तारांकन है, क्योंकि यह स्पष्ट रूप से ऐसी सेटिंग नहीं है जहां शिष्यत्व के आदेश को जीना आसान होगा। मेरे दुख में शामिल हो जाओ। यह कहना एक बात है कि यदि आप किसी बड़े शहर में रह रहे हैं, आप देश से बाहर हैं, और आप सोचते हैं, ठीक है, किसी दिन हमें सताया जा सकता है। लेकिन पॉल मौत की कतार में है, और वह कहता है, मेरे साथ आओ। मसीह यीशु के एक अच्छे सैनिक की तरह। एक सैनिक के रूप में सेवारत कोई भी व्यक्ति नागरिक मामलों में नहीं उलझता, बल्कि अपने कमांडिंग ऑफिसर को खुश करने की कोशिश करता है। इसी तरह जो कोई भी एथलीट के रूप में प्रतिस्पर्धा करता है, उसे नियमों के अनुसार प्रतिस्पर्धा करने के अलावा विजेता का ताज नहीं मिलता है। मेहनती किसान को ही फसल का पहला हिस्सा मिलता है। मनन करो एक और आदेश है, मैं जो कह रहा हूं उस पर मनन करो, क्योंकि प्रभु तुम्हें इन सब बातों की समझ देगा। तो कुछ अवलोकन। सबसे पहले अनुग्रह निष्क्रियता के बजाय शक्ति और असफलता से संतुष्टि का संचार करता है। कभी कभी कम से कम उन सेटिंग्स में जहां मैं रहा हूं अनुग्रह का जश्न मनाया जाता है, क्योंकि अनुग्रह का मतलब है कि हमें काम नहीं करना है। ग्रेस का मतलब है कि यह मुफ्त है। इसमें सच्चाई है, लेकिन इस हद तक नहीं कि हमें आलस्य, निष्क्रियता या यहां तक कि पाप का बहाना बनाकर अनुग्रह का दुरुपयोग करना चाहिए। मैंने एक बार एक पूजा नेता को यह कहते हुए सुना था कि जब हम पूजा करने आते हैं तो हम अपने पापों को भगवान को अर्पित करते हैं और वह हमें अपनी कृपा प्रदान करते हैं। खैर, उस कथन में सच्चाई यह है कि ईश्वर हमारे पापों को क्षमा करता है, और अक्सर कुछ पूजा सेवाओं में आप यह श्लोक सुनेंगे, यदि हम अपने पापों को स्वीकार करते हैं तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें शुद्ध करने के लिए वफादार और न्यायप्रिय है। सब अधर्म लेकिन भगवान के लिए एक भेंट, यहां तक कि भगवान के लिए एक पाप बलि कभी भी ऐसी नहीं होती, यह मेरा योगदान है, और फिर भगवान हमारे योगदान को अपनी क्षमा के साथ आशीर्वाद देते हैं। पाप शर्मनाक है। पाप एक शर्मिंदगी है। पाप ईश्वर का अपमान है। भगवान पाप से नफरत करते हैं, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसे कौन करता है। यह उनके चरित्र के लिए अजीब है, और यह एक चमत्कार है कि हम पवित्र भगवान की उपस्थिति में अपने पापों के परिणाम स्वरूप तले नहीं जाते हैं। आप यशायाह को अध्याय 6 में देखते हैं, जो अपमानित है क्योंकि वह भगवान की उपस्थिति में अपने पाप को महसूस करता है। या हम पतरस को यीशु के साथ नाव में देखते हैं, जो महसूस करता है कि यीशु में कुछ उत्कृष्ट है, यहाँ तक कि उसकी सेवकाई के आरंभ में ही। और वह कहता है, हे प्रभु, मुझसे दूर हो जाओ, मैं एक पापी आदमी हूँ। इसलिए ईश्वर और पाप के बीच कोई मित्रता नहीं है, भले ही ईश्वर पापियों को क्षमा प्रदान करता है। तो अनुग्रह कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें कमजोर करती है, या जो मानकों को गिराती है, या जो हमें प्रलोभित करती है। मुझे पता है कि मैं पाप में जी रहा हूँ, लेकिन ईसाई होने का स्वभाव अनुग्रह के कारण है कि भगवान आपके पाप को क्षमा कर देते हैं। तो जैसा कि पॉल ने रोमियो 6 में कहा है, क्या हमें पाप करते रहना चाहिए ताकि अनुग्रह प्रचुर मात्रा में हो? नहीं, यह इस तरह काम नहीं करता। कृपा शक्ति का संचार करती है। दूसरे, देहाती मंत्रालय अपने सबसे निचले स्तर पर शिष्यत्व मंत्रालय है, और मैं पहले ही इस पर टिप्पणी कर चुका हूँ, और मैंने कल इस पर टिप्पणी की थी कि कैसे उत्तरी अमेरिकी चर्च में हमें पूजा पाठ मिलता है, जो एक अच्छी बात है, लेकिन कुछ लोग पूजा पाठ में ही महान होते हैं। वे सीखने और दूसरों को सिखाने में बहुत अच्छे नहीं हैं, और अन्य लोग महान हैं। कुछ चर्च जो बहुत धार्मिक हैं, वे बल्कि उदास हैं। और हम ऊंचे चर्च के बारे में बात करते हैं, और यह सुंदर है, लेकिन तब और भी प्रकार के आम चर्च हो सकते हैं, और यह एक संगीत कार्यक्रम में जाने जैसा है, और वहां महान संगीत है, और शायद बहुत कुशल संगीतकार हैं, शायद वे अपना संगीत भी लिखते हैं। और एक ईसाई होने का मतलब है शायद एक निश्चित स्तर के कपड़े पहनना, और एक निश्चित जनसांख्यिकीय के साथ होना, और कुछ संगीत का आनंद लेना, और बस संगीत बनता है, और आप बस खुश और खुश हो जाते हैं, और आपके हाथ ऊपर उठ जाते हैं, और यह सब है, अच्छा है, लेकिन वह वास्तव में चर्च नहीं है। यदि बस इतना ही है, यदि मुख्य रूप से यही है, तो हम किस बात का जश्न मना रहे हैं? क्या हम अपना जश्न मना रहे हैं? क्या हम ईश्वर का उत्सव खोखला ढंग से मना रहे हैं? क्योंकि जब कोई पापी पश्चाताप करता है, तो परमेश्वर, स्वर्गदूत आनंदित होते हैं, और ईश्वर दुनिया को छुटकारा दिलाने के काम में लगा हुआ है, और मुझे लगता है कि वह हमारे आनंद में आनंदित होता है, लेकिन दिन ब दिन, सप्ताह दर सप्ताह, और वर्ष दर वर्ष नहीं। हम वास्तव में शिष्य नहीं हैं, हम सिर्फ अच्छा संगीत और विशेष रूप से सुरक्षित संगीत पसंद करते हैं। वहां संभवतः मारिजुआना सिगरेट इधर उधर नहीं घूम रही होगी, और चर्च में किसी नियमित संगीत कार्यक्रम की तरह अच्छे संगीत के बीच नशीली दवाओं का सेवन नहीं किया जा रहा होगा। यह शायद सुरक्षित है, और यह एक अच्छा माहौल है, लेकिन यह बहुत पाखंडी हो सकता है। यदि हम शिष्यत्व का जीवन नहीं जी रहे हैं, लेकिन हम यीशु का जश्न मना रहे हैं, तो यीशु ने कहा, जाओ और शिष्य बनाओ। उन्होंने यह नहीं कहा, जाओ और संगीत कार्यक्रम करो और मेरी खुशी महसूस करो। यह स्वीकार्य है, लेकिन अगर यह मुख्य रूप से हमें ईसाइयों के रूप में पहचानता है, तो यह मूल रूप से सड़ा हुआ है। देहाती मंत्रालय अपने सबसे बुनियादी शिष्यत्व मंत्रालय में है, और पादरी को हमेशा तैयार रहने के लिए समायोजित होने की आवश्यकता होती है। हम शिष्य बनाने और शिष्य बनने में और अधिक प्रभावी कैसे हो सकते हैं? तीसरा, जीवन के कई क्षेत्रों की तरह, और हमें यहाँ जीवन के तीन अलग अलग क्षेत्रों का उल्लेख मिलता है, देहाती सेवा के लिए किसी वरिष्ठ के प्रति अत्यधिक समर्पण की आवश्यकता होती है, यानी यह सैनिक छवि से लिया गया निष्कर्ष है। सैनिक नागरिक मामलों से विचलित नहीं होता। हो सकता है कि उसे कुछ हद तक उनमें शामिल होना पड़े, लेकिन वह अपने कमांडिंग ऑफिसर को खुश करने की कोशिश करता है, और मैं अपने वरिष्ठ के प्रति उस अत्यधिक समर्पण को कहता हूँ। और तीमुथियुस के लिए एक उपमा है, क्योंकि उसे अपने प्रभु के प्रति अत्यधिक समर्पण होना चाहिए। उसे दुनिया में रहना है, लेकिन उसकी प्राथमिक वफादारी अपने कमांडर के प्रति है और यही उसकी आशा निहित है। उसकी ताकत झूठ है और उसकी पुकार झूठ है। और क्योंकि हम पापी हैं, हम हमेशा अपने कमांडिंग ऑफिसर को कम करने और उन चीजों में अधिक शामिल होने के लिए प्रलोभित हो सकते हैं जिन्हें हम तर्कसंगत और उचित ठहरा सकते हैं, और वे महत्वपूर्ण हैं, और हमारे कमांडर के साथ उस करीबी रिश्ते से चूक जाते हैं। हम जानते हैं कि हमें यहीं रहना चाहिए। फिर यहाँ एक दूसरी छवि है और वह एथलीट है। नियमों के अनुसार प्रतिस्पर्धा करने के अलावा उसे विजेता का ताज नहीं मिलता है। यहाँ यह विचार निहित है कि हम जीतने के लिए दौड़ रहे हैं। हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया जयवंत से भी बढ़कर हैं। हम नहीं हैं, हम भाग नहीं रहे हैं। और एक पुरानी छवि थी, मुझे बस गौरव भूमि के कोने में एक छोटा सा केबिन चाहिए। हम अपने प्रभु के लिए महानतम चीजें चाहते हैं जिन्हें वह हमारे जीवन में ला सके। वह हमारे पूरे ध्यान और हमारे पूरे प्रयास के योग्य है, जो कहना आसान है, लेकिन इसके लिए हमेशा महीनों और वर्षों के समर्पण की आवश्यकता होती है, ताकि हम सीख सकें कि जीवन कैसे जीना है जो वास्तव में उसके लिए समर्पित है। क्योंकि हम में से कोई भी पूर्ण ईसाई चर्च या घराने से नहीं आया है, और कभी कभी हम विश्वास में आते हैं, हम पहली पीढ़ी हैं, और हमने कभी भी ईसाई धर्म को जीवित होते नहीं देखा है। या हो सकता है कि हम उन घरों से आए हों जहां हमारे माता पिता की शादी बहुत खराब थी, और हो सकता है कि हमने किसी ऐसे व्यक्ति से शादी की हो जिसकी शादी भी बहुत खराब रही हो, और किसी तरह हम मसीह में विश्वास पाते हैं और हम ईसाई के रूप में विकसित होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम सब कुछ शादी के बारे में जानिए क्या है पेंच, और इसलिए विवाह बहुत कठिन है। हमारे पास कोई आदर्श नहीं है, हमारे पास कोई आदर्श नहीं है। हम नहीं जानते कि इसे सही तरीके से कैसे किया जाए, और भगवान सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। हमें वास्तव में प्रभु की, विवाह की और रिश्ते की संतुष्टि प्राप्त करने में कई साल लग सकते हैं, लेकिन हम विजेता के ताज के पीछे हैं। हम पीछे नहीं हैं, ठीक है, मुझे पता है कि मैं एक ईसाई हूं और मुझे पता है कि मैं स्थिर हूं, लेकिन मैं लाइन से बाहर हूं। यह रवैया हमारे जीवन में ईश्वर की महिमा और अनुग्रह और मसीह में विकास की मिठास के अनुरूप नहीं है। तो यह देहाती सेवा और शिष्यत्व पहचान के बीच दूसरा सादृश्य है। हमें उन सिद्धांतों को लागू करना होगा जिनका हम आविष्कार नहीं करते हैं, लेकिन आविष्कार नहीं करते हैं। एथलेटिक्स में नियम हैं, और यदि आप नियमों के अनुसार प्रतिस्पर्धा नहीं करते हैं तो आपको ताज नहीं मिलता है। ईश्वर के पास एक दुनिया है, और ईश्वर के पास एक चर्च है, और ईश्वर के पास मार्गदर्शन और निर्देश हैं, और यदि हम अपना जीवन ईश्वर की दुनिया और ईश्वर के निर्देश के मापदंडों के अनुरूप नहीं जीते हैं तो हमें पुरस्कार पाने की कोई उम्मीद नहीं है। हम नहीं हैं, हम जो भी प्रयास करेंगे उसमें असफल होंगे। और फिर तीसरा उदाहरण मुझे लगता है बहुत बहुत सरल है। मेहनतकश किसान। इस पर निर्भर करता है कि आप दुनिया में और अपने जीवन में कहाँ हैं। इसके बारे में बहुत कुछ है या आप इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। और यदि आप इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं तो यह बहुत संभव है कि आप कृषि जीवन को रोमांटिक बना लें, क्योंकि यह सोचना आसान है, ताजी हवा और गायें और फूल और घास का मैदान और इस प्रकार के की चीजें। लेकिन अगर आप दुनिया के उस हिस्से में हैं जहां लोग मेरे दादा दादी की तरह रहते हैं, और मेरे माता पिता के 5 बच्चे थे और वे मुझसे इतना प्यार करते थे कि हर गर्मियों में वे मुझे विदा कर देते थे, मुझे लगता है कि मैं सबसे पसंदीदा था। और मुझे 80 एकड़ के खेत में भेज दिया गया जो बहुत बड़ा नहीं है, और मेरे दादाजी 2 घोड़ों के साथ खेती करते थे। और ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि वह किसी धार्मिक समूह का था, ऐसा इसलिए था क्योंकि वह गरीब था और उनके पास अंदर बाथरूम नहीं था और वे हर दिन लगभग एक जैसा ही खाना खाते थे। और जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे एहसास हुआ कि मेरे दादा दादी निर्वाह किसान थे। उन्होंने मुश्किल से ही इसे बनाया और हर साल अपना कर चुकाने के लिए वे कुछ सुअर बेचते थे। उनके पास कुछ सुअर थे और इस तरह उन्होंने अपना कर चुकाया। और जब मैंने गर्मियों में वहां जाना शुरू किया तो उनकी उम्र केवल 50 के आसपास थी, लेकिन कड़ी मेहनत के कारण वे गठिया से पीड़ित हो गए थे और सर्दियों में उनके पास पतले कपड़े होते थे। मेरे दादाजी के पैर और उनके जोड़ इतने सूज गए थे कि वह सामान्य जूते भी नहीं पहन पाते थे। उसने ये फ्लॉपी रबर के जूते पहने थे और मोजे नहीं थे। क्योंकि वह अंदर था, वह बहुत दर्द में था और किसी भी चीज से उसके पैरों को चोट लगी थी और वह ऐसा नहीं कर सकता था। जब वह चर्च गया तो उसने ये सैंडल पहने जो बिल्कुल जालदार चमड़े की तरह थे और वह ऐसा नहीं कर सका। बक्कल मत बांधो क्योंकि उसके पैर बहुत सूज गए थे। तो प्राचीन दुनिया में खेती वातानुकूलित कैब में ट्रैक्टरों से नहीं होती थी। खेती कठिन थी और खेती अक्सर बहुत लाभदायक नहीं होती थी। और एक किसान के रूप में आपके भूखे मरने का खतरा हमेशा बना रहता था, क्योंकि अगर आपकी फसलें ठीक नहीं हुई तो सर्दियां आने पर आप क्या खाएंगे। तो यह पादरी के लिए एक छवि है। पादरी बीज बो रहा है। पादरी खेती कर रहा है। वह एक खेत जोत रहा है। लेकिन यह कठिन काम है। और पॉल कहते हैं, मैं जो कह रहा हूं उस पर विचार करो, इस बारे में सोचें और आपको बात समझ आ जाएगी। मसीह यीशु में जो अनुग्रह है उसमें मजबूत होना ऐसा ही दिखता है। दुख में मेरे साथ शामिल हों, उस सैनिक की तरह बनो, उस एथलीट की तरह बनो, उस किसान की तरह बनो। इन बातों पर विचार करें और आपके जीवन के लिए अनुप्रयोग हैं। तीमुथियुस। बस एक अंतिम टिप्पणी, मैं जो कह रहा हूं उस पर विचार करें। ध्यान दे, वह कहता है, क्योंकि प्रभु तुम्हें इन सब बातों की जानकारी देगा। और मेरी टिप्पणी यह है कि हम ये सब बातें जान सकते हैं। मैं ये बातें समझाता रहा हूं, लेकिन हमें व्यक्तिगत रूप से इन छवियों के निहितार्थ को स्पष्ट करने के लिए दिव्य रोशनी की आवश्यकता है। यह बाइबल अध्ययन और बाइबल पढ़ने के प्रलोभनों में से एक है कि हम कुछ समझते हैं और हम सोचते हैं, ठीक है, यह पर्याप्त है, और फिर हम चले जाते हैं। और जैसा कि जेम्स इसका वर्णन करता है, यह दर्पण में देखने जैसा है और फिर वहां से निकलने के बाद यह भूल जाना कि हम कैसे दिखते हैं। यदि आप दर्पण में देखते हैं और आपके चेहरे पर बहुत सारा तेल लगा हुआ है, तो जब आप दूसरी ओर देखते हैं तो आपको एक कपड़ा उठाना चाहिए और अपना चेहरा पोंछना चाहिए। आपको यह नहीं कहना चाहिए, ठीक है, मेरे चेहरे पर चिकनाई लग गई, और फिर चले जाओ और इसके बारे में भूल जाओ। जब हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं तो कुछ विचार बनाना, कुछ विचार उत्पन्न करना और फिर चले जाना और वास्तव में इससे प्रभावित न होना आसान होता है। और पॉल चाहता है कि तिमोथी इससे प्रभावित हो। तो वह कहते हैं, मैं जो कह रहा हूं उस पर विचार करो। यह कोई आम शब्द नहीं है। मैं जो कह रहा हूं उस पर विचार करें। प्रभु तुम्हें अंतर्दृष्टि देगा। अध्याय श्लोक 8 में जारी है। यीशु मसीह को याद रखें। अब यह एकमात्र समय है जब यीशु मसीह 2 तीमुथियुस में इस क्रम में हैं। और मुझे यकीन नहीं है कि यीशु प्रथम क्यों हैं। मैं एक मिनट में एक सुझाव दूंगा, लेकिन यह श्लोक में किसी और चीज के साथ संयोजन में है। मृतकों में से पुनर्जीवित यीशु मसीह को याद करें। यदि आप मौत की कतार में हैं और यीशु जी उठे हैं, इसके बारे में सोच रहे हैं, तो यह प्रासंगिक है। और यदि आप तीमुथियुस को उसी तरह कष्ट सहने के लिए बुला रहे हैं जैसे आप कष्ट सह रहे हैं, तो उसे भी यीशु के मृतकों में से पुनरुत्थान से प्रोत्साहित होने की आवश्यकता है। डेविड से उतरा। अब मुझे यह अंदाजा हो गया है कि यह कम से कम उनकी सामान्य जातीयता की अचेतन पुष्टि है। जब यीशु को पुनर्जीवित किया गया तो उसे मार डाला गया, लेकिन आप इसे सकारात्मक रूप से देख सकते हैं। वह दाऊद से किए गए मसीहाई वादे को पूरा करने वाला था। आप इसे वंशावली वास्तविकता के संदर्भ में भी देख सकते हैं। यीशु दाऊद से ऊपर उठे थे और हम भी हैं। यीशु ने कष्ट उठाया और जीवित हो उठा, और मैं भी वैसा ही हूं। इस यीशु को याद रखें। और इसलिए यीशु यह बिल्कुल यहूदी नाम या बिल्कुल हिब्रू नाम है। और वह मसीह निकला, तो यहां आप अनुमान लगा सकते हैं कि वह यीशु के यहूदी होने, उनके इब्राहिम वंश डेविड के बेटे की स्थिति पर जोर दे रहा है। और फिर भी वह परमेश्वर की अर्थव्यवस्था में विजयी था। और पौलुस कहता है, यह मेरा सुसमाचार है। यीशु मृतकों में से जीवित हो उठे। निस्संदेह वह मर गया था क्योंकि उसे क्रूस पर चढ़ाया गया था। तो क्रूसीकरण वहां भी है। यह मेरी अच्छी खबर है। और यह सचमुच एक प्रकार की विडंबना है। यह मेरी अच्छी खबर है। मेरा यूएंजेलियन, जिसके लिए मैं पीड़ा सह रहा हूं, यहां तक कि मुझे अपराधी की तरह जंजीरों में जकड़ा जा रहा है। वह वास्तव में अपराधी नहीं था, लेकिन उसके साथ ऐसा ही व्यवहार किया जाता था। लेकिन परमेश्वर का वचन जंजीर में नहीं बंधा है। विचार यह है कि यही मायने रखता है। संदेश जंजीर में नहीं बंधा है, बस संदेशवाहक। इसलिए मैं चुने हुए लोगों की खातिर सब कुछ सहता हूं। और वहां परमेश्वर द्वारा उन व्यक्तियों के चयन के बीच एक समानता है जो सुसमाचार सुनते हैं और बचाए जाते हैं। और पूरे पुराने नियम में हम देखते हैं कि ईश्वर चुनाव करता है और ईश्वर के पास उद्देश्य हैं, और वह कुछ उद्देश्यों के लिए कुछ लोगों को खड़ा करके उसे पूरा करता है। और उसके साथ एक निश्चित रहस्य जुड़ा हुआ है। और पॉल कहते हैं, ईश्वर का वह कार्य, ईश्वर का वह रहस्यमय चुनाव कार्य जिसके द्वारा वह लोगों को बुलाता है, और वह ऐसे लोगों को अस्तित्व में लाता है जो उस लोगों के सदस्य हैं, वह प्रक्रिया जारी रहती है। और ऐसा होने के लिए कुछ लोगों को कष्ट सहना होगा। वह कहते हैं, मैं उनमें से एक हूं। मैं चुने हुओं के लिए सब कुछ सहता हूं कि वे भी उस उद्धार को प्राप्त करें जो मसीह यीशु में है। अब सामान्य व्यवस्था है, मसीह यीशु अनंत महिमा के साथ। किसी ने उसे क्षमा करने और महिमा की आशा जानने के लिए कष्ट सहा, वह विशेष रूप से यीशु था। और वह यीशु का प्रेरित है, और अब उसे जो कुछ सहना है वह सहन कर रहा है। और निःसंदेह इस सब में तीमुथियुस के प्रति उसकी अपील निहित है। यह संपूर्ण अनुभाग अपील नवीनीकृत हुई। वह अपनी स्थिति का वर्णन करके बड़े पैमाने पर तीमुथियुस से अपील कर रहा है, और यह तीमुथियुस के लिए एक अप्रत्यक्ष या परोक्ष अपील है। तीमुथी, आप भी ऐसी ही स्थिति में हैं। परिणाम अनुकूल है, लेकिन यह आसान नहीं है। परंतु मसीह इसके आधार पर है, और मसीह हमारी आशा है। और मसीह ही वह है जो हमें छुड़ाता है, और मसीह यीशु में अनंत महिमा के साथ उद्धार है। मेरा मतलब है, यीशु के लिए आग की लपटों में उतरना, वफादारी में उतरना, साहस में उतरना या डर में उतरना गौरवशाली है, लेकिन वफादार बने रहना, वह गौरवशाली है। लेकिन यह चीजों का अंत नहीं है। वहां एक महिमा है, वहाँ वास्तविक है, अंततः एक महिमामय शरीर है और एक अनंत गौरवशाली भविष्य है जिसे पॉल कहते हैं। यशायाह के साथ हम वर्णन नहीं कर सकते। आँख ने नहीं देखा और कान ने नहीं सुना वह महिमा जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है, वह मनुष्यों के हृदय में नहीं चढ़ी। तो यहाँ एक आशा है। तब हमें एक विश्वसनीय कहावत मिलती है, हमने एक तीमुथियुस में इनमें से कई को देखा और हम तीतुस में एक को देखने जा रहे हैं। लेकिन यह एक लंबी विस्तारित भरोसेमंद कहावत है और यह थोड़ी विवादास्पद भी है। चार इफ्स हैं। सबसे पहले, अगर हम उसके साथ मर गए तो हम उसके साथ जिएंगे भी। यह बात रोमियो 6 की भाषा में प्रतिध्वनित होती है, जहां पॉल मसीह के साथ उसकी मृत्यु, उसके बपतिस्मा और उसके पुनरुत्थान में हमारे मिलन के बारे में बात करता है। और जब मसीह मरे, एक अर्थ में हम उनके साथ मर गए। और यदि हम सुसमाचार संदेश के लिए हाँ कहते हैं और हम कहते हैं आप मेरे उद्धार करता हैं, तो एक अर्थ में हम कहते हैं जब आप मर गए तो मेरे पापों का ध्यान रखा गया, जब तुम मरे तो मैं भी मर गया। और पौलुस जो कह रहा है वह यह है कि यदि हम वास्तव में मसीह के प्रति समर्पित हैं जैसा कि तीमुथियुस था, तो कम से कम जब तक उस पर हाथ रखे जाएंगे और उसे उसका बुलावा प्राप्त होगा, हम भी उसके साथ रहेंगे। इस दुनिया और अगले में हम जानेंगे कि जीवन का सिद्धांत, शाश्वत जीवन, वह वर्तमान में एक गुणवत्ता है और वह आने वाले समय में एक मात्रा और गुणवत्ता है। तो यह बहुत आश्वस्त करने वाला है। यदि हम सहन करते हैं तो यह भी आश्वस्त करने वाला है, लेकिन यह थोड़ा अधिक कठिन है। यदि हम सहेंगे तो हम भी उसके साथ राज्य करेंगे। पॉल कहते हैं कि मैं सब कुछ सहता हूं। ऐसा करने का एक कारण है क्योंकि हमारे पास है, चाहे यह उसकी युगांत संबंधी महिमा में हिस्सा हो या चाहे वह कह रहा हो हम भी इस जीवन में उसके साथ राज्य करेंगे, जैसा कि पॉल कहता है हम उसके माध्यम से विजेताओं से भी अधिक हैं जिसने हमसे प्यार किया। वह अभी है। हम इस जीवन में कुछ खतरों से ऊपर रहते हैं क्योंकि मसीह हमारा भगवान और रक्षक है। तो हमारे पास दूसरी तरह की चुनौती और आत्मविश्वास का बयान है। अब अगले दो अधिक विवादास्पद हैं। तीसरा विवाद के प्रति कम खुला है। यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वह भी हमारा इनकार करेगा। यह मुझे कुरिन्थियों की याद दिलाता है, जहां पॉल कहता है मैं अपने शरीर पर वार करता हूं, ऐसा न हो कि दूसरों को उपदेश देने के बाद मैं त्याज्य साबित हो जाऊं। पॉल को मृत्यु, पुनरुत्थान और मसीह के शासन की पर्याप्तता के बारे में कोई संदेह नहीं है। इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है। ईश्वर की निष्ठा पर कोई संदेह नहीं। लेकिन पॉल जानता है कि वह खुद पर भरोसा नहीं कर सकता और वह जानता है कि उसमें कुछ है, वह इसे व्यंग्य देह कहता है, जो उसे भगवान पर भरोसा करने से ज्यादा खुद पर भरोसा करने के लिए प्रेरित करता है। और हम चर्च में लोगों के सभी देहाती पत्रों के माध्यम से उदाहरण देखते हैं जो अंत में कहते हैं ठीक है, हम पुनरुत्थान में विश्वास नहीं करते हैं। वे ऐसी बातें सिखा रहे हैं जो उन्हें प्राप्त नहीं हुई और जो सच नहीं है। और कभी कभी वे डेमास की तरह पॉल के सहायक थे, जिसके बारे में हम दो तीमुथियुस के अंत में पढ़ने जा रहे हैं। डेमास ने उसे छोड़ दिया है। वह एक प्रेरितिक सहकर्मी की तरह था और अब डेमास कहाँ है? इसलिए पॉल यहाँ जो कर रहा है वह तीमुथियुस को प्रभु के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को कम करने के लिए प्रलोभनों को स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहन दे रहा है। और कम से कम मुझे लगता है परोक्ष रूप से, क्योंकि वह यहूदी था, वह पुराने नियम को जानता था। बाइबल में उन सभी लोगों के उदाहरण याद रखें जिन्हें ईश्वर ने भरपूर आशीर्वाद दिया और जो ईश्वर से दूर हो गए। हम बेहतर नहीं हैं, हम यहूदा या राजा शाऊल से बेहतर नहीं हैं, हम बेहतर नहीं हैं। और अगर हम सोचते हैं कि हम हैं, तो बेहतर होगा कि हम इसे देखें। पौलुस कहता है, जो सोचता है कि मैं खड़ा हूं, वह सावधान रहे, कहीं गिर न पड़े। हमारी सुरक्षा का एक हिस्सा यह एहसास बढ़ रहा है कि हम कितने अविश्वसनीय हैं। यह कैसे एकमात्र ईश्वर है जिसमें हम विश्वास और मुक्ति पाते हैं। तो यह बहुत महत्वपूर्ण है कि यह नकारात्मक सोच नहीं है, यह सच्चाई से सोच रही है। हमें शरीर पर कोई भरोसा नहीं है। हमारी आशा यीशु के खून और धार्मिकता से कम किसी चीज पर नहीं बनी है। मैं सबसे प्यारे फ्रेम पर भरोसा करने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन पूरी तरह से यीशु के नाम पर निर्भर हूं। यह एक अद्भुत गाना है, लेकिन इसे गाना आसान है और वास्तव में इसका मतलब यह नहीं है, लेकिन पॉल का मतलब यह है। और फिर वह कहता है, अंततः यदि हम अविश्वासी हैं तो वह विश्वासयोग्य रहता है, क्योंकि वह अपने आप से इनकार नहीं कर सकता। और मैं इस पर आगे पीछे जाता हूं, और मैं इस पर इतना आगे पीछे जाता हूं कि मुझे नहीं पता कि मुझे लगता है कि यह क्या कह रहा है, लेकिन मैं जानता हूं कि यह दो चीजों में से एक कह रहा है, और यह दोनों बातें सच हो सकती हैं जो यह कह रहा है। इसका मतलब यह हो सकता है, अगर हम अविश्वासी हैं, जैसे पतरस अविश्वासी था जब उसने यीशु को अस्वीकार कर दिया था, वह आस्था का कार्य नहीं था, परंतु परमेश्वर विश्वासयोग्य बना हुआ है, वह स्वयं से इनकार नहीं कर सकता, और मसीह ने पतरस को क्षमा कर दिया। तो चौथा, यदि यह पुष्टि हो सकती है कि भले ही हम कमजोर हैं और भले ही हम लड़खड़ाते हैं, भगवान अभी भी उन लोगों को माफ करने के लिए वफादार है जो पश्चाताप करते हैं और उसकी ओर मुड़ते हैं, क्योंकि पतरस ने यही किया था। लेकिन इसे पढ़ने का एक और तरीका है, और मैं इसे इसी तरह पढ़ता हूं, और वह यह है कि तीसरा, यदि हम उसे अस्वीकार करते हैं तो वह भी हमें अस्वीकार करेगा, निश्चित रूप से नकारात्मक है। और चौथा, यदि अधिक सूक्ष्म है, लेकिन यह और भी अधिक नकारात्मक है। यह थोड़ा और अधिक समझाता है, और मैं व्यवस्था विवरण में अभिशाप और आशीर्वाद मार्ग के बारे में सोचता हूं, जहां भगवान दो परिदृश्य प्रस्तुत करते हैं। यह पर्वत पर उपदेश के अंत जैसा ही है। तुम्हें चौड़ा रास्ता मिल गया है और तुम्हें संकरा रास्ता मिल गया है, और आपके पास बुद्धिमान व्यक्ति है और आपके पास मूर्ख व्यक्ति है। हमें जो सौंपा गया है, हम उसका क्या करेंगे? तो श्लोक 12 के अंत में उसे अस्वीकार करने से आगे बढ़ते हुए, उसे पैना करते हुए, यदि हम अविश्वासी हैं, तो उस शब्द का अर्थ है कि कोई विश्वास नहीं है। यदि हमारे पास विश्वास नहीं है, तो भगवान को यह पसंद नहीं आएगा, ठीक है, आप एक विशेष मामला हैं। मुझे याद है जब यहूदा, मुझे आपके द्वारा किए गए सभी अच्छे काम याद हैं। आप पूर्ण नहीं थे। तुमने कुछ पैसे चुराए। तुमने यीशु को धोखा दिया। लेकिन वास्तव में जो पैसा दिया गया उसका लगभग 90% आपने गरीबों को दिया। वह मधुमक्खी की तरह है। वह तुम्हें अंदर ले आएगा इतने लंबे समय तक, और फिर 2 या 3 दिनों की तरह आपके पास 2 या 3 बुरे दिन थे। चिंता मत करो, तुम स्वर्ग जाओगे। इस धारणा पर कि यहूदा विनाश का पुत्र था जो यीशु के साथ था, और उसने कभी भी परिवर्तन के लिए अपना हृदय नहीं खोला, उस धारणा पर वह अविश्वासी था, और तमाम दिखावे के बावजूद वह शिष्य नहीं थे। और भगवान वफादार रहता है। भगवान ने एक प्रस्ताव रखा है। वह एक ऐसा परमेश्वर है जो अनुबंध करता है, और यदि हम वाचा में प्रवेश करते हैं तो हमें सुरक्षा प्राप्त है। परंतु यदि हम वाचा में प्रवेश करके देखें तो परमेश्वर हमारे हृदयों को जानता है। वह यहूदा के हृदय को जानता था। और यदि हम ऐसे ही हैं और हम कैसे हैं, तो ईश्वर स्वयं को अस्वीकार नहीं कर सकता। ईश्वर यह गिरगिट नहीं है जो उपदेश दिए जाने के बदलते स्वरूप के साथ बदल जाता है। मेरे अपने जीवन काल में भगवान का विभिन्न तरीकों से प्रचार किया गया है। हमारे पास स्वास्थ्य और धन का सुसमाचार है। और अपने अध्ययन के दौरान मैंने यीशु कौन थे इसके बारे में सभी प्रकार की समझ देखी है। और यीशु को जानने या न जानने के लाभ को अधिकतम करने के लिए आपको क्या करने की आवश्यकता है। ऐसे बहुत से विद्वान हैं जो सुसमाचार की सच्चाई के बारे में बहुत नकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं, और उनके लिए सत्य की उद्घोषणा की मांग है कि हम हर किसी को बताएं कि इसमें से बहुत कुछ सच नहीं है। इटेल लिनमैन नाम का एक प्रसिद्ध जर्मन विद्वान है जो अब प्रभु के साथ है। वह जर्मनी में 20वीं सदी के सबसे प्रतिष्ठित बाइबल विद्वान रुडोल्फ बुल्टमैन की छात्रा थीं, और वर्षों तक उस संशयवादी परंपरा में प्रशिक्षित होकर उन्होंने जर्मन विश्वविद्यालय में पढ़ाया, और उसने विद्यार्थियों को सिखाया कि सुसमाचार सत्य नहीं है। और बाद में वह ईसाई बन गई और उसे इसका पश्चाताप हुआ। और जब उनसे पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया, उन्होंने कहा, ठीक है, मुझे विश्वास हो गया कि मैं सत्य की उद्घोषणा को आगे बढ़ा रही हूं। सच तो यह है कि बाइबल सत्य नहीं है। यदि हम इसी मार्ग पर चलते हैं तो भगवान बदलने वाला नहीं है। कहो, ओह, अब मैं देख रहा हूं कि मदरसा के प्रोफेसर इसे पढ़ा रहे हैं। ठीक है, मुझे अपना उद्धार कुछ हद तक बदलना होगा ताकि ये लोग खो न जाएं। वह अपनी पहचान सिर्फ इसलिए नहीं बदलेगा क्योंकि लोग उसके प्रति अपना प्रतिनिधित्व बदल देते हैं। दूसरी आज्ञा है, मूर्तियां मत बनाओ। और लोग ऐसा करना पसंद करते हैं, और इसलिए यह ऐसा न करने की चेतावनी है। यहां एक सरल अवलोकन मसीह का विजयी धैर्य पॉल के धैर्य की गारंटी देता है। मसीह में परमेश्वर का विजयी धीरज पॉल की गारंटी देता है। तो यह इस पूरे अनुभाग का सकारात्मक पहलू है। यीशु मसीह को याद करें। वह वफादार था और उसकी खातिर मैं वफादार हूं। लेकिन फिर इसमें एक और भरोसेमंद कहावत है जो एक प्रेरणा है। तीमुथियुस, मसीह से विमुख होना चुने जाने का विकल्प नहीं है। यह एक सैद्धांतिक संभावना है, लेकिन यह कोई बटन नहीं है। आप मसीह के अनुयायी के रूप में बेदखल नहीं करना चाहते। चाहे चीजें कितनी भी बुरी क्यों न हो, बस वहीं डटे रहो। और मुझे लगता है कि उन्हें उम्मीद है कि तिमोथी ऐसा करेंगे। आइए अब झूठे शिक्षकों से निपटें। परमेश्वर के लोगों को ये बातें याद दिलाते रहो। तो अब वह स्वयं तीमुथियुस से उन लोगों की ओर मुड़ रहा है जिनका तीमुथियुस नेतृत्व करता है। परमेश्वर के सामने उन्हें चेतावनी दो, जैसे तीमुथियुस को पौलुस ने परमेश्वर की उपस्थिति में चेतावनी दी थी। परमेश्वर के सामने उन्हें शब्दों पर झगड़ने से सावधान करो। यह पादरी द्वारा अपने आध्यात्मिक अधिकार का प्रयोग करने का एक उदाहरण है। वह निर्देश देता है, लेकिन वह चेतावनी भी देता है। वह चरवाहा है। वह भेड़ों की रक्षा कर रहा है। उन्हें शब्दों के बारे में झगड़ने के प्रति सचेत करें। इसका कोई मूल्य नहीं है और केवल सुनने वालों को बर्बाद करता है। कुछ ऐसी चर्चाएं हैं जिनसे हमें दूर हो जाना चाहिए। अपनी पूरी कोशिश करो। और उस शब्द का अनुवाद भी किया जा सकता है, उत्साही बने या कोई कष्ट न छोड़े। जो भी इसे चाहिए दो। इस तरह मैं इसका अनुवाद करूंगा। अपने आप को ईश्वर के समक्ष स्वीकृत व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करने के लिए जो भी करना पड़े वह करें। एक कार्यकर्ता जिसे शर्मिंदा होने की आवश्यकता नहीं है और जो सत्य के शब्द को सही ढंग से संभालता है या सत्य के शब्द को सही ढंग से संभालता है। ईश्वरविहीन बकवास से बचें, क्योंकि जो लोग इसमें शामिल होंगे वे और अधिक अधर्मी हो जाएंगे। मुझे लगता है कि आज कम से कम अमेरिका में मैं सोचता हूं कि राजनीति के बारे में कितनी चर्चा होती है और संस्कृति कैसे यह धारणा देती है कि भविष्य में मानवता की मुक्ति इस बात में निहित है कि हम किसे चुनते हैं और राजनीतिक समाधान में निहित है। समाधान जो कांग्रेस बनाएगी या समाधान जो राष्ट्रपति बनाएंगे, यह जीवन और मृत्यु है। राजनीति जीवन और मृत्यु बन गई है। या वैज्ञानिक मुद्दे, जलवायु संबंधी मुद्दे, रोग संबंधी समस्याएं। हमारी आशा CDC और WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा दिए गए स्वास्थ्य अधिदेशों से कम पर नहीं बनी है। मनुष्य आश्वस्त है कि वह एक अधिक स्मार्ट ग्रह बना सकता है। ऐसा लगता है कि हमें पहले कुछ लोगों के लिए लिंग को नष्ट करना होगा, लेकिन लोग इस बकवास में शामिल हैं और इसमें से बहुत कुछ ईश्वर विहीन और जानबूझकर ईश्वर विहीन है, और कुछ लोग जो ईसाई हैं उन्हें इसमें शामिल होने की आवश्यकता है। मैं कुछ हद तक बाइबल पढ़ा रहा हूँ। मुझे बहुत सी चीजें पढ़नी पड़ती हैं जो बाइबल में विश्वास नहीं करने वाले लोग दुनिया में पढ़ा रहे हैं, ताकि मैं अपने छात्रों को बता सकूं कि वे यही कह रहे हैं। और यहाँ कुछ चीजें दी गई हैं जिन्हें आपको यह जानने की आवश्यकता है कि आप बाइबल के बारे में और इस ईश्वर विहीन बकवास के बारे में क्या सोचते हैं। लेकिन मैं इसमें परिवर्तित नहीं हो सकता और मुझे सावधान रहना होगा कि मैं इसमें इतना शामिल न हो जाऊं कि मैं सिर्फ ईश्वर विहीन बकवास का एक मिशनरी बन जाऊं, या कि मैं ईश्वर विहीन बकबक में फंस जाता हूं और दूसरे लोगों का खंडन करने की कोशिश करने वाला एक और क्रोधित व्यक्ति बन जाता हूं। जो लोग इसमें लिप्त होंगे वे और अधिक अधर्मी हो जाएंगे, यही होता है। और दुर्भाग्य से कुछ चर्च अधर्मी हो गए हैं, क्योंकि उनके पास ऐसे लोग हैं। वे राजनीतिक रूप से वामपंथी हैं, वे राजनीतिक रूप से दक्षिणपंथी हैं, और वे इस अधर्मी दृष्टिकोण में शामिल हो गए हैं कि मनुष्य के पास ही अंतिम समाधान है। और मैं यह नहीं कह रहा हूं कि इस सारी चर्चा को मिटाया जा सकता है या कि यह मानक नहीं है। मेरा मतलब है, चर्चा से कुछ निष्कर्ष निकलेंगे और हम जहाज पर हैं। मैं भगवान के लोगों से कह रहा हूं, पवित्र होने और भगवान के प्रति समर्पित होने के उनके आदेश के हिस्से के रूप में उन्हें यह पता लगाना होगा, ठीक है, मैं इसमें कितना शामिल हो सकता हूं और मुझे भगवान को कितना ध्यान रखने देना है दुनिया, और सुनिश्चित करें कि मेरी शादी, मेरी दोस्ती, चर्च में मेरा काम, मेरा दैनिक भक्तिपूर्ण जीवन, मेरे बच्चों के साथ मेरा रिश्ता, मेरे काम के साथ मेरा रिश्ता, मैं कितना करता हूँ। इसलिए नहीं कि मैं इनकार में हूँ, बल्कि इसलिए कि मैं अपनी क्षमता और अपनी बुलाहट को लेकर यथार्थवादी हूँ। और तीमुथियुस एक देहाती नेता के रूप में उनसे कहा जा रहा है, देखो, लोगों को अपने क्षेत्र में वफादार होने के लिए प्रोत्साहित करो और भगवान को दुनिया पर शासन करने दो, और बड़ी चर्चाओं में लालच में न पड़ो जिससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि वे इन चीजों में इतने अधिक शामिल हो जाते हैं तो यह उन्हें अधर्मी बना देगा। उनकी शिक्षा गैंग्रीन की तरह फैल जाएगी। और फिर उसने दो नाम रखे, हुमिनियस और फिलेतुस। हम उनके बारे में जो कुछ भी जानते हैं वह यही है, वे सत्य से भटक गए हैं। वे कहते हैं कि पुनरुत्थान पहले ही हो चुका है, और वे कुछ लोगों के विश्वास को नष्ट कर देते हैं। जो कोई उनकी बात मान लेगा उसका सारा विश्वास नष्ट हो जाएगा, लेकिन हर कोई इसे नहीं खरीद रहा है, परंतु कुछ लोग इसे खरीद रहे हैं और उनका विश्वास नष्ट हो गया है। फिर भी भगवान की ठोस नींव दृढ़ है, उनके शिलालेख से सील की गई है। भगवान उन्हें जानते हैं जो उनके हैं, और जो कोई भी भगवान के नाम को स्वीकार करता है उसे दुष्टता से दूर होना चाहिए। देहाती देखभाल में झूठी धारणाओं की लगातार अवहेलना शामिल है, और कभी कभी जो लोग उन्हें बढ़ावा देते हैं, जैसे उन दो नामित व्यक्तियों को। वफादार पादरी अपना काम अच्छी तरह से करता है, श्लोक 15 में। अपने आप को ईश्वर के समक्ष स्वीकृत के रूप में प्रस्तुत करने के लिए उत्साही रहें। आपको शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। आप सत्य के वचन को अच्छी तरह संभाल रहे हैं, और यह आपको इस ऑपरेशन में पादरी के मुख्य हथियार के बारे में भी कुछ बताता है। यह परमेश्वर का वचन है। वह एक सेवक है, परमेश्वर के वचन का एक मंत्री है। वह एक शिक्षक है। वह परमेश्वर के वचन के इस उपकरण के साथ अपनी निगरानी और सुरक्षा, मार्गदर्शन और चेतावनी का कार्य करता है। वफादार पादरी अपना काम अच्छी तरह से करता है, जो उस पर भरोसा करते हैं उन्हें न्याय दिलाने के लिए भगवान के वादे पर भरोसा करता है। प्रभु उन्हें जानता है जो उसके हैं। वह उनका समर्थन करेगा। वह उन्हें तेजी से पकड़ लेगा। वह उन्हें देख लेगा। और वह ईश्वर की मांग पर निर्भर है कि जो कुछ अपवित्र है उससे अलग हो, जैसे कि हाइमेनियस और फिलेतुस और उनके विचार और जो भी आंदोलन इस समय तक उनके साथ जुड़ा हुआ है। मुझे लगता है कि शायद हमें इस समय एक ब्रेक लेने की जरूरत है। मैं जानता हूं कि हम अध्याय 2 के अंत तक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हम अपने अगले व्याख्यान में थोड़ा समय निकाल सकते हैं। तो हम यहीं रुकेंगे और फिर 2:20 बजे वापस आकर फिर से शुरू करेंगे। यह डॉक्टर रॉबर्ट डब्ल्यू यारब्रो, देहाती धर्मपत्रों, देहाती नेताओं और उनके अनुयायियों के लिए प्रेरितिक निर्देश पर अपने शिक्षण में है। 17:9 2 तीमुथियुस 2:1-21।